الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على من كان نبيا وادم بين الماء والتين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاه دائمه بدوام الملك الحي القيوم. پہلی نشست میں ہم نے جادو کے متعلق بیان کیا تھا اور جادو کی حقیقت، اس کے اسباب، اس کی ابتدا، یہ تمام چیزیں پہلی نشست میں بیان کی تھی اور اس نشست کو الحمدللہ کافی پسند کیا گیا اور دور دراز سے ای میل کے ذریعے اور اس کے علاوہ بھی پیغامات آئے، اور اس میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کا اگلا حصہ ہم بعد میں بیان کریں گے، تو آج اس کا اگلا حصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. جادو کی حقیقت، اس کے اسباب، اس کی ابتدا یہ پہلی نشست میں بیان ہو چکی ہے. آج دو چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے. پہلی چیز جادو سے بچنے کا طریقہ اور دوسری چیز جادو کا علاج. پہلے تو اس سے بچنے کا طریقہ کہ آپ کس طرح اس سے بچ سکتے ہیں، اور دوسری چیز کہ اگر کسی پر جادو ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے. بڑی توجہ سے سنیں، انشاءاللہ سب کو فائدہ ہوگا. جادو سے بچنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک صاف رکھے، کیونکہ جادو جو ہے یہ ایک نجس چیز ہے. جو کرتا ہے وہ بھی ناپاک ہے، یہ عمل بھی ناپاک ہے اور شیطانی عمل ہے، شیطان ہی کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، شیطانی موکلات اور وہ ساری چیزیں. تو جو لوگ پاک صاف رہتے ہیں وہ اتنے متاثر نہیں ہوتے بنسبت ان کے کہ جو ناپاک رہتے. بالفاظ دیگر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں اور جو نہیں پڑھتے وہ افیکٹو ہو جاتے ہیں، اثر انداز ان پر جادو ہو جاتا. اس لیے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو خود بخود پاک رکھتی. اب جو نماز پڑھے گا تو دن میں 5 مرتبہ لازمی وضو کرے گا، اور جب وضو کرے گا تو لباس یقیناً پاک رکھے گا. ظاہر ہے لباس پہ کوئی نجاست لگ جائے، کہیں سے ناپاک ہو جائے، اس کو خیال ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے تو لباس پاک رکھے گا. اچھا، لباس پاک ہو گیا، اب وہ اپنا جسم بھی پاک رکھے گا، غسل کرے گا، اور ویسے کوئی معمولی نجاست ہے تو اس سے اپنے جسم کو پاک کرے گا، اور وضو تو لازمی ہے. تو جب دن میں 5 مرتبہ وہ وضو کرے گا، جسم پاک ہو گیا، لباس ویسے ہی پاک ہیں، خیالات بھی پاکیزہ ہو جائیں، ذہن بھی پاکیزہ ہو جائے، اور پھر آپ حساب لگائیں کہ اگر ایک نماز میں 10 منٹ لگتے ہیں عام طور پہ، اگر بہت زیادہ آرام سے، خشوع خضوع سے، سکون سے تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھی جائے 15 منٹ، اگر 10 منٹ بھی لگائیں تو 5 نمازوں میں کتنے منٹ ہوئے؟ 50. 50 منٹ آپ ہر قسم کی فروعات سے، ہر قسم کے خرافات سے اور ہر قسم کی گندگی سے پاک محفوظ. ظاہر ہے جب نماز پڑھیں گے تو محفوظ رہے. تو جو شخص پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے وہ ویسے بھی جادو سے محفوظ ہے، ایک یہ بات یاد رکھیے. اپنے جسم کو پاک رکھیں، اپنے لباس کو پاک رکھیں اور اپنے گھر کو بھی پاک رکھیں، یہ بھی اس میں ضروری ہے. عام طور پہ یہ اس طرف خیال نہیں ہوتا کہ گھر میں ناپاکی ہے، گندگی ہے، خاص طور پہ خواتین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس چیز کا دھیان رکھیں، اور آپ حضرات کو چاہیے کہ آپ ان کو دھیان دلائیں کہ اگر وہ اس طرف ان کی توجہ نہیں ہے، مثلا یہ کہ بچے نے پیشاب کر دیا چھوڑ دیا، اس کو فوراً پاک کرنا چاہیے، اگر کسی کپڑے پر ہے، چاندنی پر ہے، قالین پر ہے، اس کو فوراً دھو کر صاف کرنا چاہیے، اس میں بو تک نہ رہے، اگر کوئی قالین ہے تو اس کو صابن سے صاف کر لیجئے، کوئی کپڑا ہے تو اس کو پانی سے پاک کر لے، یعنی کوئی بھی گندگی کسی قسم کی نہ رہے۔ عام طور پہ دیکھا گیا کہ اس طرف کوئی دھیان نہیں، تو جتنا آپ کا گھر پاک اور صاف ہوگا ان گندی چیزوں سے محفوظ رہے گا، اور اگر کوئی چیز داخل ہوگی تو فوراً محسوس ہوگا کہ ظاہر ہے گھر تو پاک صاف ہے، کسی نے کوئی چیز ڈال دی، کوئی ایسی ناپاک چیز۔ اور جادو کے سلسلے میں جتنی چیزیں ہوں گی سب ناپاک ہوں، پاک ہو ہی نہیں سکتی کبھی، اس میں کبھی خوشبو آ ہی نہیں سکتی، بدبو ہی ہوگی۔ تو سب سے پہلی چیز کیا کہ ہم نماز کی پابندی کریں اگر ہم جادو سے بچنا چاہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوگا، ایک چیز میں ساری چیزیں، صرف آپ نے نماز کی پابندی کی، جسم خود بخود پاک، لباس خود بخود پاک، ذہن بھی پاک، پانچ پانچ وضو کر لیا، گناہوں سے بھی پاک۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، پاکیزگی جسم کی، پاکیزگی لباس کی، پاکیزگی ذہن کی، اور پاکیزگی گھر کی، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس سے بچنے کے لیے۔ اس کے بعد پھر ہے وظائف، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کے لیے۔ اچھا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے گھر پہ نہیں ہوا جادو، وہ کہیں پر گیا، اور کوئی ایسا دشمن ہے کہ جو اس پہ جادو کرنا چاہتا ہے یا کروانا چاہتا ہے، کوئی چیز اس کو کھلا دی، کوئی بھی چیز، اب اس پہ جادوگر نے دیا مثال کے طور پہ کہ یہ چیز فلاں کو جا کے کھلا دو، اب اس نے پان میں کھلا دی، اس نے مٹھائی میں کھلا دی، اس نے چائے میں ڈال کے، اس نے شربت میں، ہزاروں چیزیں کھانے پینے کی۔ اور بعض اوقات ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ آدمی انکار نہیں کر سکتا، یعنی ہمیں انڈیکیشن ہو رہا ہے کہ یہ غلط ہے لیکن آپ انکار نہیں کر سکتے۔ کوئی بہت ہی قریبی دوست ہے اور وہ بڑے والہانہ انداز میں آپ سے ملے گا، نہیں نہیں یار یہ تو تمہیں کھانا ہی پڑے گا، اب کیا کریں؟ اس کا ایک طریقہ یہ ہے، سورہ لیلاف، لیلاف قریشن ایلافم، یہ پوری سورت چھوٹی سورت ہے، آرام سے یاد ہو جاتی۔ اگر آپ کو یہ شبہ ہو کہ یہ آدمی مجھے کچھ کھلا دے گا، یہ عورت کچھ ڈال کے کھلا دے گی، اور خاص طور پہ عورتوں کو زیادہ شبہ ہوتا ہے کیونکہ عورتیں بھی نشست سن رہی ہیں، تو اس لیے میں سب کے لیے بتا رہا ہوں، عورتوں کو خدشہ ہو کہ فلاں مجھے کھلا دے گی، مرد کو خدشہ ہو کہ یہ دوست مجھے کھلا دے گا۔ دل ہی دل میں خاموشی سے سورہ لیلاف پڑھیں، دم کریں، کھا لیں، کچھ نہیں ہوگا، اس کا اثر ہی ختم ہو جائے گا، یہ اللہ کے کلام میں برکت ہے۔ تو بزرگوں نے فرمایا یہ سورت جو ہے، یہ سورہ لیلاف، یہ اگر آپ ایک مرتبہ بھی پڑھیں، اگر ٹائم ملے تو تین مرتبہ پڑھ لیں، لیکن اگر ایسی سچویشن ہے کہ آپ کو کھانا ہی ہے، آپ انکار نہیں کر سکتے، اور دل یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کچھ ہوگا، بعض دفعہ غلط بھی ہو سکتا ہے، بہت سی ہم سوچتے ہیں کہ یہ آدمی کر رہا ہے لیکن پتہ چلا کہ وہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہا نا، ان بعض ظن اسمن، بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں جب تک تصدیق نہ ہو جائے۔ اب یہاں آپ دیکھ لیں، صبح سے شام تک فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، وہ جو میری سانس ہے وہ کچھ پڑھ رہی تھی، اس کے ہونٹ ہل رہے، تو ہم نے کہا ہو سکتا ہے سورہ فاتحہ پڑھ رہی، نہیں نہیں سورہ فاتحہ نہیں، ارے وہ مسلمان نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، نہیں وہ کچھ پڑھ کے میرے اوپر دم کر رہی۔ بہو کو شک ہوا، ساس پہ ساس کو ہوا، بہو پہ، یہ چل رہا ہے دنیا کا نظام۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جادو وادو ہوتا ہی نہیں، گمان، غلط، وہم، یہ چیزیں ہوتی جو انسان کو تباہ کر دیتی، اور اس کے بعد بس وہ پوری ایک فلم تیار ہو جاتی۔ اچھا اس نے یہ کیا، تو اتفاق سے آپ گھر گئے تو بیمار ہو گئے، ہاں میں جو اس کے گھر میں جو پانی پی کر آئے نا، یہ جب ہی ہوا ہے، اس نے جو چائے پلائی جب ہی ہوا ہے، جب ہی سے بس آتے ہی میرا سر چکرا گیا، میرا دماغ ایسا ہو گیا، میرا دل دھڑکنے لگا، بھائی یہ ساری پھر وہ چیزیں ہو جاتی۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ اگر ایسی صورت ہو कि आप उस चीज से मना भी नहीं कर सकते। कोई ऐसा दोस्त है या ऐसी महफिल में है, सूरह लैलाफ एक मर्तबा, कम से कम, ज्यादा हो तीन मर्तबा, सात मर्तबा, जैसे आपको टाइम, खामोशी से पढ़ के दम करके पी लें, कुछ नहीं होगा। खा लेंगे तो कुछ नहीं होगा, पी भी लेंगे तो कुछ नहीं होगा, उसका असर खत्म हो जाएगा। एक ये बेहतरीन नुस्खा है। इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि हम जादू से महफूज रहें, मसलन हम कहीं जाएं जब भी महफूज रहें, कोई दूर से करे तब भी महफूज रहें, क्योंकि ये दूर से भी हो सकता है, इसमें जरूरी नहीं कि आप जाएं वो आपको खिलाए, नाम से भी हो जाएगा, फोटो से भी हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे? अब हमारे पास जो मरीज आते हैं कि ये बताइए कि किसने किया, क्यों बताएं भाई, हम उससे बचेंगे? कैसे बचोगे? मिलना जुलना छोड़ दोगे? हाँ, मिलना जुलना छोड़ देंगे, फिर भी हो जाएगा। हम उसके घर जाना छोड़ देंगे, उसको बुलाना छोड़ देंगे, फिर भी हो जाएगा। वो तो फोटो से हो जाएगा, और आजकल तो मोबाइल ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी, यहां से खींचा वहां सेंड कर दिया, पहुंच गया, यहां से एक मिनट में अमेरिका पहुंच जाए तो पाकिस्तान में क्या बात है? तो ऐसी टेक्नोलॉजी, फिर कैसे बचोगे? इसलिए बेहतर तरीका यह कि भाई आपको आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से क्या करना है? आम खाना है तो बस ठीक है, इलाज चाहिए ना, इलाज जरूरी नहीं किसने किया क्या किया, वहम करने की जरूरत ही नहीं। एक ऐसी चीज बता दें कि जो हर चीज का तोड़ जिसके अंदर हो, तो जादू का, सिफली का, नजर का, नजर बद का, हसद का, जलन का, हर चीज का तोड़ दुआ जुलबहर। ये बुजुर्गों ने एक ऐसी चीज सरकार का दिया, आप सुन चुके, नबी पाक अलैहिस्सलाम का तोहफा है रूहानी। हजरत शेख अबुल हसन अली शाजली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये दुआ मैंने लिखी नहीं है, मैंने इसके अल्फाज तराशे नहीं है, दहने रिसालत से लिए, सरकार के जबाने मुबारक से मैंने ली, हुजूर ने मुझे याद कराए, जबाने मुबारक से मैंने सुने और मैंने याद कर ली और आगे उसको जारी कर। तो दुआएं हिफ्ज़ुल बहर, इसीलिए कितने सौ, 800 या 900 साल गुजर चुके, आज भी उसी तरह पढ़ी जा रही है जिस तरह पहले दिन पढ़ी गई, और इसमें इजाफा ही हो रहा। आप इस दुआ को मामूली ना समझे, जो लोग इस दुआ की पाबंदी करते हैं, पाबंदी से पढ़ते हैं, समझ लें कि वो नजर बद से भी महफूज हैं, जादू से भी महफूज हैं, सिफली से भी महफूज हैं, हर किस्म की गलत चीज से महफूज हैं। ऐसी अजीम शान दुआ। और इसमें एक चीज और है, इंडिकेशन भी है, खतरे का अलार्म भी है, जो मुसलसल पढ़ता है ना, अगर आप मुसलसल पढ़ रहे हैं और कोई ऐसा शख्स आया जो आपको तंग करना चाहता है, आप पर जादू करना चाहता है, या कोई भी ऐसी सूरत, दिल बता देगा कि ये सही नहीं, दिल बता देगा सही। अच्छा, नजरबंदी का तो ऐसा है, जैसे कि जादू पर जो नशीस की थी उसमें हमने दादा हुजूर का वाकया बयान किया था, उसके यादे की जरूरत नहीं, आपके सामने वो करेगा और आपको पता नहीं चलेगा, नजरबंदी कर दी। इस किस्म के घूमते फिरते बहुत से आते हैं, 1,000 रुपए लाओ हम 10,000 करके तुम्हें दे देंगे। अब महंगाई का दौर है, आदमी के रोजगार वैसे ही नहीं, अरे किसी तरह मैं जमा कर लूं तो 10,000 हो जाएं, अच्छा है। और ये मैं वैसे नहीं कह रहा, ये जिन लोगों के साथ हुआ उन्होंने आकर बताया, ये कोई ऐसी बात नहीं है, बाकायदा ये चीज हुई और आजकल भी हो रही, इसलिए आप लोग होशियार रहें। लालच में कभी ना पड़े, लालच बुरी बला है, यही इंसान को तबाह कर देती, आधी छोड़ के पूरी पे गए, पूरी भी गई आधी भी गई। इन्होंने बड़ी मुश्किल से 1,000 रुपए जमा किए, उसने कहा आ जाओ बेटा मेरे सामने बैठो, सामने बैठ गए, उसने अपनी जेब से नोट निकाले, उसको आगे पीछे करना शुरू कर दिया। अब ये आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है, कहा देखते रहो गौर से, तुम्हारे सामने, आंखों के सामने तब्दील कर दी, उसके बाद गड्डी लपेट के दे दी, इसको रख लेना 1 घंटे के बाद देखना, या कह दिया 4 घंटे के बाद देखना, यानी इतना वक्त बताया कि खुद हजरत रवाना हो जाए आराम से। अब वो बेचारा बेवकूफ और लालची बना हुआ कि 1,000 के 10,000 बनेंगे, जाकर रख दिया, ये रवाना हो गए असल नोट लेकर। अब वो 1,000 10,000 तो दूर की बात है, वो 100 भी नहीं बने, और जब जाकर देखा तो वो पूरे के पूरे कागज ही कागज थे। इतनी सफाई से काम किया कि वो नोट के बराबर कटे हुए कागज बिल्कुल वाइट सफेद। अब सर पीट रहे हैं क्या हो, तो ये तो 1,000 का तो मैंने वैसे ही बताया, लोगों के तो लाखों रुपए चले गए। 1,00,000 ले आओ 10,00,000 हो जाएंगे, और खुशी खुशी 1,00,000 दे दिया किसी ने, 10,000 दे दिए किसी ने, इस तरह तो लुट जाते। अब ये सुनाने का मकसद ये है कि अगर आप पाबंदी के साथ दुआए हिज्जुल बहर पढ़ते होंगे तो अगर ऐसा शख्स सामने आएगा अव्वल तो वो खुद ही घबरा जाएगा, खुद ही समझ जाएगा इसको मैं बेवकूफ नहीं बना सकता। वजह क्या है कि दुआएं हिज्जुल बहर के मवक्कलात जो हैं वो आपकी हिफाजत करेंगे और आपका रब उसके दिल पे तारी कर, वो अपनी चौकड़ी भूल जाए। और अगर कभी ऐसा महसूस हो कि कोई आदमी ऐसा है जो आपको धोखा देना चाहता है, लूटना चाहता है, आप दिल ही दिल में ये दुआ शुरू कर दी, दुआ हिज्जुल बहर दिल ही दिल में पढ़ना शुरू कर दी। आप इधर पढ़ना शुरू करेंगे उधर मवक्कलात की हाजिरी हो जाएगी, भाग जाएगा, महफूज हो जाएगा। तो ये ऐसी दुआ है कि अगर इंसान इसको अपने विर्द में रखे, पाबंदी करे, हर चीज से महफूज, डकैती से महफूज, चोरी से महफूज, जादू से महफूज, सिफली से महफूज। लेकिन शर्त क्या है पाबंदी, कहते हम तो इतने दिन से पढ़ रहे हैं, हमें तो फायदा हुआ नहीं, अब पढ़ कैसे रहे, टीवी भी देख रहे हैं दुआ हिज्जुल बहर भी चल रही है, खेल तमाशे भी हो रहे हैं दुआ हिज्जुल बहर भी चल रही है, ऐसे कैसे फिर फायदा नहीं होगा। अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो फिर इसके असरात भी देखेंगे, फिर इसके कमालात भी देखेंगे। अब बजुर्ग किबला काफी अरसे पहले का वाकया, गाड़ी में ठट्टे तशरीफ ले गए, ठट्टे से कुछ मील दूर एक साहब थे, उनका मकान था, उन्होंने कहा हुजूर आप वहां आए तो मदार शरीफ पे हाजिरी देकर मेरे घर भी तशरीफ ले आए, गवर्नमेंट की तरफ से मुझे ये फ्लैट जो बने फ्लैट मिला है। शाम हो गई, रास्ता भूल गए, उधर रोशनी भी नहीं थी, दुआ हिज्जुल बहर का वक्त हुआ, बुजुर्ग क़िबला ने दुआ हिज्जुल बहर शुरू कर दी। अब अंधेरे में चले जा रहे हैं और तेज गाड़ी जा रही है, अचानक सामने नहर आ गई, कच्चे रास्ते में उतर गए ना, रोड नहीं था, रास्ता भूल गए, बजाय इधर जाने के दूसरी तरफ चले गए, कोई आदमी भी ऐसा नहीं कि जिससे पूछे, अंधेरा हो रहा है, मगरिब के बाद का वक्त। जो लोग साथ थे उन्होंने बताया और खुद अब बुजुर्ग क़िबला की जबानी मैंने ये सुना, दुआ हिज्जुल बहर वो पढ़ रहे थे, 6 फीट चौड़ी नहर, 6 फीट बल्कि इससे ज्यादा ही होगी और गहराई तो पता नहीं कितनी होगी, और फुल पानी उसमें भरा हुआ, और अचानक वो सामने आ जाए तो गाड़ी के ब्रेक कैसे लगे, ड्राइवर साहब भी चले आ रहे, और जैसे ही वो सामने आई, अब इन्होंने कहा हुजूर हो गया काम, जबान से यही निकला, और अब बुजुर्ग क़िबला पढ़ रहे थे, ऐसा लगा किसी ने गाड़ी उठा के नहर पार करा के रख दी, नहर के ऊपर से गुजर गई गाड़ी और इतनी जोर से वहां जाके गिरी के टायर पंचर हो। अब पलट के देखा कि ये हुआ क्या, तो जो लोग दूर खड़े देख रहे थे तो वो सोच रहे थे कि नहर में जाएंगे जरूर गाड़ी समेत, वो आकर देखते हैं ये क्या हुआ, उनका आंखों पे यकीन नहीं आ रहा। और जब अब बुजुर्ग क़िबला को देखा तो कहा इन्हीं की करामत है जो हो सके, वरना ये 6 फीट चौड़ी गाड़ी कैसे उसने पार कर ली, नहर क्रॉस कैसे कर ली। इस तरह ये दुआ हिज्जुल बहर बताते। इसी तरह एक साहब को लूटने के लिए एक कारखाने में कुछ लोग आए, लेकिन लूटना ऐसा नहीं कि कलेशनकोफ लेकर या कोई टीटी लेकर, वो यही नजरबंदी की सूरत में, हम तो फकीर हैं, हमें तो किसी चीज की जरूरत नहीं, हम तो अल्लाह वाले हैं, आओ तुम्हारा काम कर दें, तुम्हारा कारोबार कर दें, तुम्हारे इतने बेटे हैं, एक ऐसा है, एक लंबा है, एक छोटा है, एक पतला है, 2-3 चीजें बता दी, उसको यकीन हो रहा वाकई बता तो सही रही है, और बिल्कुल अननोन आदमी पहली मर्तबा है, हाँ तुम्हारे घर में परेशानी मुझे पता है, मैं भी करता हूं काम। लेकिन एकदम शक हुआ इनको कि ये कोई गड़बड़ है, तो बुजुर्ग क़िबला ने बताया था कि जब ऐसा मसला हो तो दुआए ज़ुल-बहर पढ़ना शुरू कर दो। इसने पढ़ना शुरू कर दिया, वो वहां से उठ के फौरन चले गए, आए ही नहीं, और बाहर जाकर चार आदमियों को बेवकूफ बनाकर हजार हजार रुपए उनसे लेके चले गए। अब जब वो लोग अंदर आए, इन्होंने पूछा क्या हुआ, सेठ साहब वो तो हमें इस तरह कह के चला गया। कहा आया तो मेरे पास था, आपके पास से क्यों चला गया? कहा मुझे कुछ शक हुआ था, तो मैंने कहा हजरत ने ये बताया तो दुआ ज़ुल-बहर मैंने शुरू कर दी। इस तरह ये दुआ जो है ये बचाती है। तो इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि जादू से हर चीज से महफूज रहें, पहली चीज नमाज की पाबंदी, दूसरी चीज पाकीजगी, लिबास को, जिस्म को, कपड़ों को, घर को, हर चीज को पाक रखें, और तीसरी चीज वज़ाइफ, वज़ाइफ में सबसे पहली चीज दुआए ज़ुल-बहर, और इसके अलावा कुरान करीम की कोई सूरत कोई आयत अपना मामूल बना लें, जिस तरह के हमने सूरह लैला बताई। अगर यह भी कोई शख्स मुसलसल पढ़े, एक टाइम बनाए फजर के बाद 41 मरतबा या इशा के बाद 41 मरतबा और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा, अगर उसको महसूस हो कि दुआ ज़ुल-बहर पढ़ने में परेशानी है तो ये सूरत 41 मरतबा पढ़ ले फजर के बाद या इशा के बाद, कोई एक टाइम, लेकिन पाबंदी होनी चाहिए नमाज की भी, पाबंदी होनी चाहिए वजीफे की। अगर पाबंदी नहीं होगी तो फिर फायदा नहीं होगा। इसलिए कि आप ये सोचें, ये एक फैक्ट है, एक हकीकत है कि अल्लाह के कलाम में असर मौजूद है। ये हो ही नहीं सकता कि खुदा का कलाम माज अल्लाह बेअसर हो। अगर कोई शख्स अल्लाह ताला का कलाम पढ़ रहा है, कुरान करीम की कोई आयत कोई सूरत विर्द में है, और फिर वो देखता है कि उसका काम नहीं हो रहा, सबसे पहले देखना चाहिए मेरे पढ़ने में क्या कमी है, मेरे पढ़ने में क्या कमी है। अपना मुहाजबा करे, मामूलात दुरुस्त कर ले, पढ़ाई दुरुस्त कर ले, काम हो जाए। असर है, ऐसा नहीं कि असर नहीं है, हमारे अंदर कमी है, जो उसमें काम ना होने में देर लगती है तो हमारी वजह से। तो बात आपने समझ ली, कुरान करीम की कोई आयत कोई सूरत, और अगर हो तो दुआए ज़ुल-बहर, ये एक इसके लिए हथियार है, जादू से बचने के लिए, सिफली से बचने के लिए, नजर बद से बचने के लिए, सब चीजें इसी दुआ के अंदर मौजूद हैं। एक समंदर है और समंदर के अंदर सब कुछ है। अब ये तो हो गया जादू से बचने का तरीका। अच्छा, एक तरीका और है, बल्कि दो तरीके हैं, वो भी इसी के साथ शामिल कर लूं, फिर बाद में इसका इलाज। ताबीजात जो हम देते हैं वो भी इसका तोड़ है, गले में डालने के लिए, हिफाजत के लिए। अब बच्चे तो नहीं पढ़ सकते तो बच्चों के गले में डाल दें, औरतें बाज नहीं पढ़ सकती तो उनके गले में डाल लें, आप अपने गले में डाल लें हिफाजत के लिए, कि कभी ऐसा हो कि हम पढ़ ही ना सकें या कुछ ना हो, मुस्तकिल एक वो, उससे भी हिफाजत हो जाती। अल्लाह ताला का कलाम जो है वो उसमें असर रखता है। और तावीजात पर हम एक अलग नशीत एक पूरी कर चुके हैं। और एक चीज है शेख की बारगाह में हाजिरी, ये भी सब चीजों से बचा लेते। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से मरीज दरगाह शरीफ में दाखिल होते हैं और सही हो जाते। इस चार दीवारी के अंदर जितनी इबादत हो रही है, 50 साल से जायद अरसा हो चुका, तो 50 साल से जायद निफ सदी मुसलसल इबादत हो रही है, तो इतना भी असर नहीं होगा कि कोई दाखिल हो और सही हो जाए, है ना। जहां अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है, जहां अल्लाह का जिक्र होता है, जहां अल्लाह के महबूब बंदों का मजार होता है, वहीं दिल को करार होता। तो ये चीजें भी बचाती हैं, तावीजात भी बचाते हैं। दरगाह शरीफ कायम होने से पहले का वाकया, दादा हुजूर क़िबला हयात थे, एक शख्स अब्बा हुजूर क़िबला की बारगाह में आया, उसकी बीवी की तबीयत खराब थी, उन्होंने तावीज दिया जाओ जाकर ये बांधो। उस पर जादू किया गया था और वो औरत भी यहीं गुलबहार में ही रहती थी, झोपड़ियों में, गरीब लोग थे। उसने कहा हुजूर अचानक तबीयत खराब हो गई, डॉक्टरों के पास ले गया, सबने जवाब दे दिया मर, समझ में नहीं आता। और ये चीज जो है एक्सरे में आ ही नहीं सकती, अल्ट्रासाउंड में नहीं आ सकती। कभी किसी डॉक्टर ने बताया कि अल्ट्रासाउंड में जादू आया है? किसी ने बताया कि नजरें बंद आई है? नहीं आ सकती। तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो सिरे से रद्द कर देंगे कि है ही नहीं, जाहिर उनको नजर ही नहीं आ रहा। तो रूहानी इलाज वही कर सकता है जो रूहानी इल्म रखता हो, और जिस्मानी इलाज वही कर सकता है जो जिस्मानी इल्म रखता। खैर बाहर सूरत उसने आकर बड़ी परेशानी जाहिर की, तब बदुल क़िबला ने देखा वो समझ गए, फौरन ताबीज दिए जाओ, अभी जाकर बांधो। जैसे ही बांधा तब ये ठीक हो गई। और हुआ क्या था, उस औरत को मरवाने के लिए एक शख्स ने जादूगर को उस जमाने में 200 रुपए दिए थे, आज से कोई 50 बल्कि 60 साल पहले का वाकया या इससे भी ज्यादा। उसने कहा 200 रुपए ले आओ मार दूंगा, दो मिनट का काम। उसका नाम ले आओ, ये ले आओ, उसने नाम दे दिया, उसकी हालत खराब हो गई, डॉक्टरों के पास ले गए, जवाब दे दिया, उसकी जिंदगी थी वो आ गया, इन्होंने ताबीज दिया वो सही हो गई। अब क्या हुआ कि रात को 12 बजे के बाद फिरदौस कॉलोनी वाला जो मकान दादा हुजूर क़िबला का था वहां किसी ने दस्तक दी, और अब हुजूर क़िबला वहां अपने वजाइफ में मसरूफ है, रात में नवाफिल पढ़ते थे। तो इस वक्त कौन आ गया 12 बजे के बाद? दरवाजा खोला, कोई नजर नहीं आया। देखा बाहर निकले तो देखा एक मकरूह शक्ल, बिल्कुल जिसको देखकर ही आदमी को नफरत हो जाए, काला सिया आदमी, दुबला पतला, दूर खड़ा। उन्होंने कहा क्या है? कहा आप इधर आ जाएं। क्यों तुम इधर आ जाओगे? मैं उधर नहीं आ सकता, आप इधर आ जाएं। अब यहीं से देख लो, क्योंकि वहां पढ़ाई होती थी और ये वहां जाए तो जादू ही खत्म हो जाए। इतना कमजोर अमल है, जादू जितना तीर की तरह लगता है इसी तरह खत्म भी हो जाता, और अगर कोई सही आमिल कामिल उसको पलट दे तो जो करने वाला है उसी का बेड़ा गरक हो जाता। उस पर कभी अलग नशीस करेंगे, वो भी एक वक्त दरकार है उसके लिए। तो उसने कहा आप इधर आ जाए, मैं नहीं आ सकता। क्या पता नहीं क्या मसला है, क्यों नहीं आ सकता? तो ये उसके करीब गए तो उसने दूर से 200 रुपए निकाले, ये आप ले लें। अब्बा हुजूर क़िबला ने फरमाया क्यों? तो उसने उस औरत का नाम बताया कि उसको मारने के लिए मैंने फला आदमी से 200 रुपए लिए थे और ये कहा था कि एक घंटे में मैं खत्म कर दूं, और ऐसे ही होता, मैंने ऐसा तीर बहादुर काम किया, लेकिन वो आपके पास आ गई, आपने तावीज दे दिया, वो सही हो गई, ये 200 रुपए आप लें और वो तावीज मंगवा लें ताकि मेरा काम हो जाए। उन्होंने कहा 200 रुपए इंसानी जान की कीमत 200 रुपए, लानत तुम्हारी शक्ल पर भी और तुम्हारे ये 200 रुपए पर, दफा हो जाओ यहां से। मैं ना तो तावीज मंगवाऊंगा बल्कि अभी ऐसा हिसार करूंगा तू कुछ भी करेगा उस पर कोई असर नहीं होगा, भाग जाए यहां से। गुस्से में देखा ठीक है, अब देखिएगा रात को क्या होता है आपके साथ, कहा देख लेंगे। अब उसने सोचा ये तो मंगवा नहीं रहे, पहले इनको खत्म करो तो फिर उसको करो। फिर फरमाते हैं कि वो रात गुजर गई और दूसरी रात फिर दरवाजे पर दस्तक हुई 2 बजे के बाद। पहले दिन आया था 12 बजे के बाद, दूसरे दिन 2 बजे के बाद, और जब इन्होंने दरवाजा खोला तो कोई नजर नहीं आया, तो ये समझे कि शायद फिर। तो फरमाते हैं जैसे मैं बाहर निकला तो किसी ने पीछे से आकर मुझे पकड़ लिया और पकड़ के भींचा पूरी तरह, और नजर कोई नहीं आ रहा। और जब अब्बाजुल क़िबला ने पीछे देखा, दुआए हिज्र पहर पढ़ना शुरू की, एकदम किसी ने छोड़ दिया, और जब देखा तो इंसानी ढांचा था, गोश्तपोश नहीं, इंसानी ढांचा खाली, और उसके पैर भी, उंगलियां भी, हाथ पूरी, मतलब सिर्फ ढांचा जो होता है, गोश्तपोश नहीं। और वो उस तरफ भागा हुआ जा रहा था लेकिन इधर मुड़ के देख रहा। उनका अच्छा बस यही अमल था इनका, कि इस तरह भीज के कोई और मामूली आदमी हो तो उसको भीज के खत्म कर दो, पसलियां तोड़ दो। लेकिन यहां तो सिलसिला ऊपर से नीचे तक मजबूत था। उन्होंने कहा बस यही था, और वो इसी तरह देखता हुआ उछलता हुआ रात में गायब हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीजें जो हैं इन तावीजात से भी रुकती हैं, तावीजात भी हिफाजत करते हैं। तो ये जो तावीजात दिए जाते हैं कुरानी आयात, बुजुर्गान दीन के अता करदा अमलियात, दीगर चीजें जो हैं ये भी इस जादू से सिफली से इंसान को बचाती हैं, महफूज रखती हैं। इसीलिए गले में डालने के लिए या बाजू पर बांधने के लिए ये दिए जाते हैं। और तीसरी चीज है बुजुर्गों की नजर, यही नजर हो जाए तो सारी नजरें दूर हो जाए, चाहे वो नजर बद हो, नजर जादू हो, नजर सिफली हो, कैसी भी नजर हो दूर, शेख की नजर हो गई सारी नजरें खत्म हो। तो ये सारी चीजें जो हैं बुजुर्गों से ताल्लुक, उनकी महफिल में बैठना, उनका दीदार करना, उनसे फ्यूज़ो बरकात हासिल करना, यानी हम इस चीज को समझते नहीं है महफिल में। अब इसकी मिसाल ये समझें, हजरत अली करम अल्लाह तआला वजहुल करीम से किसी ने पूछा, रहमत की बरसात होती है तो सिर्फ नेक लोगों पर या बदों पर भी? फरमाया दो बर्तन लेकर आओ, एक पाक एक नापाक, दोनों बारिश में रख दो, कौन सा भरेगा? कहा दोनों भरेंगे। ये होगा कि खाली पाक भरे और नापाक ना भरे? कहा नहीं, दोनों भरेंगे। यही मिसाल, जब रहमतों की बरसात होती है तो अल्लाह की रहमत ये नहीं देखती कि कितने गुनाहगार हैं कितने नेकोकार हैं, सब पर यकसा बरसती है। और उसकी फिर नतीजा ये होता है कि जो गुनाहगार होते हैं वो भी गुनाहों से पाक हो जाते हैं और रहमतें बरकतें लूट कर लेकर। तो इसलिए इन चीजों से बचने के लिए मुर्शिद की बारगाह में हाजिरी, बुजुर्गान दीन के मजारात पर हाजिरी, शेख की नजर, तावीजात, वजाइफ, ये सारी चीजें जो हैं ये इस जादू से सिफली से नजर बस से इंसान को महफूज रख। अब बात समझ में आ गई, ये सारी चीजें हैं। अब मैं एक मर्तबा इसको रिपीट कर दूं ताकि बात आपके जहन के अंदर बैठ जाए। सबसे पहली चीज पांच वक्त नमाज, जब आप पांच वक्त नमाज पढ़ेंगे खुद ब खुद आपका लिबास भी पाक होगा, आपका जिस्म भी पाक होगा, और जब मुसलसल पढ़ेंगे तो जहन भी पाक होगा। कम से कम 50 मिनट आप अल्लाह की रहमत में, अगर 10 मिनट लगाएं, ज्यादा हो तो और ज्यादा। इसके बाद पाकीजगी घर की, कोशिश करें कि घर साफ सुथरा रहे, पाकीजा रहे, घर वाले भी पाक साफ रहें। किसी बच्चे ने पेशाब कर दिया, पड़ा हुआ, ठीक है साफ कर देंगे, वो पता चला वहीं पड़े पड़े सूख गया, कपड़े गंदे पड़े वो वहीं सूख गए, नहीं, घर में पाकीजगी होनी चाहिए, कुरान की तिलावत होनी चाहिए, नमाज होनी चाहिए। इसीलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फर्ज मस्जिद में पढ़ो, सुन्नतें घर में पढ़ो। सुन्नतें घर में पढ़ने का हुक्म है, मस्जिद में पढ़ने का हुक्म नहीं। फरमाया घर में सुन्नतें पढ़ो, फराइज मस्जिद में पढ़ो, इसलिए कि अपने घरों को कब्रस्तान ना बनाओ। जब घर में पढ़ोगे तो वहां भी रहमतें होंगी, और दूसरी बात यह कि घर वाले देखेंगे, बच्चे देखेंगे, उनको भी पता चलेगा हमारे वालिद कुछ नमाज पढ़ रहे। लेकिन मस्जिद में पढ़ने की इजाजत इसलिए दी गई कि अगर मना ही कर दिया जाए तो कोई पढ़ेगा ही नहीं, नमाज ही बड़ी मुश्किल से पढ़ते हैं, तो इसीलिए कि चलो मस्जिद में पढ़ लो। लेकिन अगर हो सके तो आप सुन्नतें घर में पढ़ें, फर्ज मस्जिद में पढ़ें, फिर बकिया सुन्नतें घर में पढ़ें। अगर मस्जिद में पढ़ते हैं उसमें कोई मना नहीं है, पढ़ सकते हैं। लेकिन घरों को सरकार ने फरमाया हदीस शरीफ के मुताबिक कब्रस्तान ना बनाओ, नमाजें पढ़ो, रहमतें नाजिल होंगी, अल्लाह की बरकतें नाजिल होंगी। तो ये तो सारी चीजें हो गई। जादू से बचने के तरीके हमने कहा था ना, दो चीजें बयान करेंगे, एक बचने का तरीका, एक उसका इलाज। बचने का तरीका तो इसलिए कि ये चीज हो ही नहीं, जादू ही ना हो, पहले से तदबीर कर ली जाए। आप देखते ना, डेंगू वायरस और क्या अजीब अजीब बीमारियां नई नई जो है ना, खुद ही वायरस छोड़ते हैं और खुद ही इलाज करते हैं आजकल तो, ये इल्ला माशाल्लाह। अब लोग लगे भाई ये हो गया वो हो गया, चिकनगुनिया हो गया, बहुत से लोगों को ये कहना नहीं आता था, वो लिख के देते मुर्गी की बीमारी हो गई। मैंने कहा ये क्या हो गया, अजीब अजीब चीजें। खैर बारह, तो इसी तरह ये भी वायरस है, जादू का वायरस, बदनजरी का वायरस, जेलेसी का वायरस, ये सारे वायरस तो है ना, बीमारी जरासीम। अब इससे बचने के तरीके तो हमने बता दिए कि ये आप करें तो आप इससे महफूज रह सकते हैं। अगर बिलफर्ज हो जाए, क्योंकि होने का इम्कान भी है, हो सकता है इंसान से कोई गफलत हो जाए और उस पर हो जाए जादू, अब क्या करें? अब उसका इलाज अहादीस में सूरह फलक और सूरह नास इसके पढ़ने का हुक्म आया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बल्कि खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम का अमल यह था, पढ़कर अपने दस्ते मुबारक पर दम किया और अपने जिस्म अक्दस पर फेरा, सूरह फलक सूरह नास। और बाद अहादीस में सरकार ने फरमाया ये जादू का इलाज, बाद में आया कि नजर बद का इलाज। इसीलिए बुजुर्गानुद्दीन औलिया कामिलीन ने फरमाया, क्योंकि ये अहादीस से साबित है तो फिर उन्होंने इसकी तादाद भी मुकरर की। अगर सूरह फलक और सूरह नास 101 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके जादू वाले को पिला दें तो इंशाल्लाह जादू से महफूज हो। 101 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास दोनों। इसके अलावा यह है आयतल कुर्सी, हैरत की बात यह कि बहुत से लोगों को यह भी याद नहीं होती, और मुझे बड़ी हैरत हुई कि यहीं आने वाले एक साहब जब मैंने उनको बताया, हुजूर ये तो मुझे याद नहीं, हैरान रह गए। कम से कम 10 सूरतें, ये हम पहले नशिस्तों में भी बता चुके हैं, सबको याद होनी चाहिए, अलम तरा कैफ से वन्नास तक, और कोई मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं आराम से। और आप याद करेंगे तो आपका कमाल नहीं है, ये तो कुरान का कमाल, ये कुरान का इजाज है कि याद हो जाता है। कोई कहने मुझसे याद नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता, याद करने बैठेंगे याद हो जाएगा। तो ये 10 सूरतें इसलिए याद करने के लिए कही जाती हैं कि ताकि नमाजों में आसानी के साथ मुख्तलिफ सूरतें आप पढ़ सकें। खैर आयतल कुर्सी तो इससे अलग है, लेकिन हिफाजत के लिए, जान और माल की हिफाजत के लिए, दीगर चीजों से महफूज रहने के लिए ये एक बेहतरीन नुस्खा। अगर 11 मरतबा आयतल कुर्सी और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा के साथ पढ़कर आप अपने ऊपर रोजाना दम कर लें, जादू से भी महफूज, सिफली से भी महफूज, नजर बद से भी महफूज, बल्कि हर किस्म के हादसात से भी महफूज। इसलिए यह बड़ी जरूरी चीज है, ये तो बल्कि बच्चों को याद होनी चाहिए, बल्कि बच्चों को याद होती है, अक्सर घराने में तो बच्चे सुना देते। तो अगर किसी को याद नहीं है तो उसको चाहिए याद कर ले, और याद करने में कोई मसला नहीं, आप खुद भी याद करें, अपने बीवी बच्चों को भी याद कराएं। और खुद पढ़ने में मुश्किल है तो किसी आलिम से, किसी हाफिज से, किसी कारी से आप सुनकर याद कर ले। और अब तो इतनी आसानी है कि वो कुर्रा हजरात के कैसेट मिलते हैं, यूट्यूब पर आप देखने मौजूद हैं, वेबसाइटों पर मौजूद है, मुख्तलिफ बेहतरीन कारी जो पढ़ने वाले उनकी आवाज में आप सुने, सुन सुनकर खुद ब खुद याद हो जाए। तो इसको याद रखना चाहिए। आयतल कुर्सी किसी को याद नहीं, कुर्सी याद है खाली, कुर्सी सबको याद, जितने सियासी हैं सबको कुर्सी याद, आयतल कुर्सी याद नहीं। और यह हकीकत अगर इनसे पूछ लो तो किसी को याद नहीं होगी, कुर्सी के पीछे सारे फिर रहे, अगर ये आयतल कुर्सी पढ़ते होते तो वो कुर्सी खुद बखुद मिल जाती। तो ये भी इसका एक इलाज है, जादू का इलाज। एक तो हमने बताया सूरह फलक सूरह नास, और एक ये आयतल कुर्सी। अच्छा, आयतल कुर्सी जो है इसकी तादाद 11 भी है, इसकी तादाद 7 भी है। अगर कभी आपके पास कोई इतना वक्त नहीं है, मुख्तसर टाइम है, तो आप कम से कम 7 मरतबा जरूर पढ़ लें, रात को सोते वक्त या सुबह उठते वक्त, 24 घंटे का एक हिसार है। लेकिन दोनों में अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़ा जाए, और उसके बाद अपने ऊपर दम कर लें, अपने बच्चों पे दम कर लें, खास तौर पे छोटे बच्चे, कमसिन बच्चे, उन पर दम कर लें। तो ये जो है ये इसका इलाज है। तो हमने इसीलिए ऐसी चीजें बताई हैं, क्योंकि ये नशिस नेट पर जाती हैं, लोग दूर दूर से इसको सुनते हैं, अमल करते हैं, वज़ाइफ पढ़ते हैं। तो वो चीजें हमने बता दी कि जो दूर बैठने वाला जो है, जो गैर ममालिक में भी है, वो भी इसको आराम से कर सकते हैं इस अमल को, और इंशाअल्लाह ताला जब वो करेंगे तो जरूर जरूर फायदा होगा। और ये सोच कर करें कि अल्लाह के कलाम में असर मौजूद है, अल्लाह के कलाम में असर मौजूद है। बस ये कि बदगुमानी ना करें, किसी के लिए जहन में ना सोचें कि ये मेरे ऊपर जादू कर रहा, फला ने कर दिया। और दूसरी एक और बात कि जो आजकल आमिल बैठे हुए हैं, जिसके पास आप जाएंगे वो बता देगा हाँ तुम्हारे ऊपर किया, किसी से कहा कि तुम्हारी सास ने किया है तो सास से कहा, तो बहू ने किया है, तो भाभी से कहा कि नंद ने किया है, तो आपस में लड़ाई कर दे। तो इसलिए इन लोगों की बातों पर यकीन बिल्कुल ना करें, और ऐसी जगह जाने से परहेज करें ताकि बदगुमानी पैदा ना हो। कितनी लड़ाइयां इस वजह से हो गई, कितने घर बर्बाद हो गए। तो ये सब, ये लोग जो बैठे हैं ना, ये सब अल्लाह की बारगाह में जवाबदेह होंगे। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आप सही जगह हैं, इसी जगह रहिए, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। तो ये चीज हमने आपके सामने बयान कर दी, उससे बचने का तरीका भी बता दिया और उसका इलाज भी बता दिया। अब जिन लोगों ने सुना, गौर से सुना, उनको याद रहेगा, और अगर किसी ने नहीं सुना तो ये कुछ दिन के बाद YouTube पर भी और हमारी वेबसाइट पर भी ये नशिस्त हमारी मौजूद होगी, उसको दोबारा इत्मीनान से सुन लें, और वरना हमसे भी पूछ सकते हैं, और इसको अपने विर्द में रखें, इसको पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह ताला इसमें कामयाबी होगी। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको इन तमाम चीजों से, जादू से, सिफली से, नजर बद से, जेलसी से, और जितनी भी गलत चीजें हैं, इन सब से महफूज रखें। आइए दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ फरमा, या अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमा, या अल्लाह हमारे सजदों को कबूल फरमा, या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा, जो किसी परेशानी में मुब्तला हैं उनकी परेशानियों को दूर कर, जो कर्जदार हैं उन्हें बारे कर्जे से दोषी फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद अता फरमा, जो साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को उनका फरमाबरदार बना। ऐ इलाहुल आलमीन, ये तमाम हजरात और ख्वातीन जो दूर दराज मकामात से इस नशिस्त में शिरकत करने के लिए हाजिर हुए, मौला इन सब की हाजिरी को कबूल फर, इन सब पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फर, इनके इल्म में, अमल में, उम्र में बरकत अता फर, इनके रोजगार में तरक्की अता फर, इनकी जाहिरी, बातनी, रूहानी, जिस्मानी बीमारियों को, परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर फर। इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين।